ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 25वां अध्याय, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक 51। देवहुर्नाम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरंजनः राष्ट्रम उत्तर पंचालम याति श्रुतधरान्वितः। श्रीपाद नारद मुनि राजा प्राचीन बहिष्यत को कथा सुना रहे हैं राजा पुरंजन की। और इस कथा में प्रसंग यह है कि राजा पुरंजन घूमते घूमते एक अच्छे शहर में पहुंच गए हैं जहां भोग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजा पुरंजन आत्मा का प्रतीक है और ये शहर इस शरीर का प्रतीक है, और इस शहर अर्थात इस शरीर का वर्णन हो रहा है। बताया गया है कि इस शरीर में या इस शहर में 9 द्वार होते हैं, 7 ऊपरी द्वार और 2 नीचे के द्वार। इन 7 ऊपरी द्वारों में से 5 हमारे ऊपर की दिशा में स्थित हैं, 2 आंखें, 2 नसिके, 1 मुंह और 2 कान। ये 5 जो सामने की ओर देखते हैं वो पूर्व दिशा के द्वार कहलाते हैं, और जो दाहिना कान है वो दक्षिण के भाग का द्वार कहलाता है, और जो बायां कान है वो उत्तर की दिशा का द्वार कहलाता है। तो यहां तुलना शहर और शरीर में की गई है। हम 2 आंखें, 2 आंखों के बारे में, 2 नसिकों के बारे में और मुंह के बारे में सुन चुके हैं, और कल दाहिने कान के बारे में भी सुन चुके हैं। कल यह बताया गया कि दाहिना कान कर्म कांड के कार्य में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात भोग के विषय का श्रवण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब राजा पुरंजन भोग करना चाहते थे या भोग के विषय सुनना चाहते थे तो उस द्वार से वो बाहर जाया करते थे श्रुतिधर नाम के उनके मित्र के साथ, और वो जगह का नाम था दक्षिण पंचाल। लेकिन जब राजा पुरंजन आध्यात्मिक विषयों के बारे में सुनना चाहते थे तो वो इस द्वार से जाते थे जो कि उत्तर दिशा में था, और वो जाते थे उत्तर पंचाल देश में। इस प्रकार से यहां भेद किया गया है इन दोनों कानों में, हमारा दाहिना कान और हमारा बायां कान। दाहिना कान जो है वो कर्मकांड और विषय भोग के लिए, जिससे कि हम पितृलोक जैसे लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं और वहां जाकर बहुत ही उत्तम श्रेणी के विषय भोग का अनुभव कर सकते हैं, और बायां कान वो गुरु से दीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करके हम वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जा सकते हैं, और कम से कम आध्यात्मिक लोक में नहीं जाएं तो इस ब्रह्मांड के ही ऊपर के ऊपर लोकों में जा सकते हैं, जैसे कि जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि। लेकिन स्वर्गलोक, पितृलोक, चंद्रलोक में नहीं, क्योंकि ये भोग के लोक हैं। लेकिन ऊपर के लोक, इनसे भी जो ऊपर लोक होते हैं जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक, ये तपस्या के लोक हैं जहां केवल ऋषि मुनि लोग रहते हैं, भोगी लोग वहां नहीं रहते। तो इस प्रकार से दोनों कानों में भेदभाव किया गया है। वैसे देखा जाता है कि लोगों को कर्मकांड ये ऐसे कार्य करने में बहुत रुचि है जिनसे कि उनको अच्छे से अच्छे भोग की सुविधा प्राप्त हो, और खास करके जिनको ऊपर के लोकों की या स्वर्ग लोक की पितृलोक की प्राप्ति करनी है वो ऐसे कर्मकांड करते हैं। भगवत गीता में भगवान ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य अभिपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यत् अस्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। वो कहते हैं कि ऐसे कोई लोग हैं अभिपश्चितः, जो कि जिनकी बुद्धि कम है, और वेदवाद रतः, जो अपने आप को वेद के अनुयायी समझते हैं, सोचते हैं कि मैं वेद का पालन कर रहा हूं, और कभी कभी इसमें घमंड भी उनको होता है। लेकिन किस चीज के लिए वेद का पालन करते हैं? कामात्मानः, केवल अपने काम वासनाओं को, अपने इंद्रिय विषयों भोग करने की इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। और किस तरह की चीजें वो करते हैं, किस तरह की इच्छाएं अपने मन में रखते हैं? स्वर्ग परा, उनको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्यम गतिम प्रति, वो ऐसे बड़े बड़े शानदार धूमधाम से क्रिया वगैरह करते हैं, कर्मकांड के सत्यनारायण कथा हो या ये ज्योतिषोम यज्ञ हो, ऐसा यज्ञ वो यज्ञ इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं धूमधाम से, ताकि ऐसे ऊपर के लोग उनको प्राप्त हो जाए। जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसे सब कर्म कांड के कार्य करने से ऊंचा जन्म मिलता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है इत्यादि। तो ये लोग सोचते हैं कि इससे अलावा न अन्यत अस्तित्ववादिनः, कि ये सब चीजों के अलावा वेदों में और कुछ है ही नहीं। अर्थात ये लोग ऐसे समझते हैं कि धर्म केवल हमारे भोग को सुधारने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे शब्दों में धर्म एक भोग का साधन या वाहन हो जाता है इनके लिए, और इसलिए जो ये वेदों के कर्मकांड के मंत्र होते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, तो ऐसे जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है कर्मकांड में, जो बड़े संगीतमय मधुर ढंग से जो ब्राह्मण पुरोहित बोला करते हैं, उनसे बड़े आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमें करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसी धारणा का खंडन करते हैं, बोलते हैं ये लोग अविपश्चित हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, और कहते हैं कि ऐसे लोग हालांकि धार्मिक अपने आप को प्रस्तुत करते हैं समाज में, लेकिन फिर भी वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भोग की कामना इतनी तीव्र है कि भगवान की भक्ति ये लोग नहीं कर पाएंगे। भोगैश्वर्य गतिम प्रति प्रसक्त भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहरित चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनके हृदय में भोग और ऐश्वर्य की कामना बहुत तीव्र है, ये लोग कभी एकाग्र चित्त से, स्थिर मन से भगवान की भक्ति या सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान पर आगे अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए वेद के ये कर्मकांड इत्यादि, याम इमाम पुष्पिताम वाचन, फूलों जैसे जो वचन हैं, इनसे आकर्षित नहीं होना। त्रैगुण्य विषय आवेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि ये जो वेद है, कर्मकांड है, ये तीन गुणों में ही फंसा हुआ है। ये कर्मकांड सत्वगुण रजोगुण तमगुण, बस इसमें ही भ्रमण करते रहते हैं ये लोग, इसलिए निस्त्रैगुण्य, लेकिन इसके परे हो जाओ हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वंद्वों से परे हो जाओ, निर्योग क्षेम इस योग क्षेम के द्वंद्व से भी परे हो जाओ। यह संसार में ये दो बड़े द्वंद्व होते हैं, योग और क्षेम। योग मतलब किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, मुझे और पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, योग ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करना। और क्षेम मतलब जब चीजों को प्राप्त करते हैं तो उनका संरक्षण करना, ये दूसरी चिंता हो जाती है। तो जो व्यक्ति इस योग क्षेम के चक्कर से परे हो जाता है, उसने वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर लिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे कर्म कांड के फूलों जैसे जो वचन है उनसे आकर्षित न होकर केवल उन्हीं को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वेदों को जानने का उद्देश्य यही है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेदवित एव चाहम्। जो व्यक्ति वेदों का पाठ करता है लेकिन कृष्ण को नहीं जानता उसके वेद का अध्ययन व्यर्थ है, लेकिन जो कृष्ण को जानता है भले वो वेद न जानता हो लेकिन वास्तव में वो वेद जान चुका है, क्योंकि वेदों को अध्ययन करने का उद्देश्य या सार ही वो जान चुका है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिक स्तर में आए, न कि धर्म को केवल एक भौतिक साधन, भौतिक भोग का साधन बनाए, क्योंकि मनुष्य जीवन आध्यात्मिक जिज्ञासा करने के लिए है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, केवल भोग के लिए नहीं। भोग तो केवल पशु भी कर सकते हैं, पक्षी भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति ये महत्वपूर्ण बात है। और भगवत प्राप्ति श्रवण के ऊपर आधारित है, भोग भी श्रवण के ऊपर आधारित है। जब हम सुनते हैं कि अरे वाह यहां ये इस तरह का भोग उपलब्ध है, उस तरह का भोग उपलब्ध है, बचपन से लेकर बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें भोग करना चाहिए, तो इस प्रकार से श्रवण करने से, अलग अलग तरह के श्रवण करने से हम अलग मार्ग में चले जा सकते हैं। दाहिना कान भोग के लिए, तो दाहिना कान का जब इस्तेमाल करते हैं कर्म कांड की क्रियाओं में, भोग के मामलों में, तो भोग प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। लेकिन जब हम बायां कान का प्रयोग करते हैं, जब गुरु से दीक्षा लेते हैं और मंत्र बायां कान में लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे भोग का जीवन समाप्त। अभी हम आध्यात्मिक स्तर में आए हैं और अभी केवल कृष्ण के बारे में श्रवण करना और किसी चीज के बारे में बोलना नहीं, सुनना नहीं, सोचना नहीं, केवल कृष्ण और कृष्ण की सेवा, यही एकमात्र विषय। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, पिबन्ति भगवतात्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहांतिकम्। सूत गोस्वामी बताते हैं कि हमें अपने कर्णों से भर भर के कृष्ण कथा के अमृत का पान करना चाहिए, और ऐसे पान करने से विषय विदूषिताशयम्, जो विषय इंद्रिय विषयों को भोग करने की जो वासना है हमारे हृदय में, वो शुद्ध हो जाएगी। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, और जब हमारे हृदय में इंद्र तृप्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी तब व्रजंती हम जा सकते हैं कहां, चरण सरोरुहांतिकम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि दाहिना कान कर्म कांड के लिए और भोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बायां कान केवल आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करने में, इसलिए कृष्ण कथा सुनते समय हम दाहिना कान बंद करके बैठे हैं, ऐसा नहीं। वैसे भी कृष्ण कथा सुनते समय दोनों कान ही बंद ही हो जाते हैं, क्योंकि दोनों आंखें भी बंद हो जाती हैं, या तो मन कहीं इधर उधर जाता है। इसलिए कृष्ण कथा तो आध्यात्मिक है, इसलिए दाहिना कान हो बायां कान हो दोनों कानों से भर भर के सुनना चाहिए। श्रवण पुटेशु संभृतम, संभृतम अर्थात भर के, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कथा सुनने में हमें नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सुन लिया, अभी थोड़ा कम सुने, आधा क्लास तो सुन लिया कम से कम, बाकी आधी क्लास में सो सकते हैं, नहीं, भर भर के सुनना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सुनना चाहिए। और ऐसा करने से बहुत ही जल्द हमारे जीवन की सफलता को हम प्राप्त कर पाएंगे। वैसे जो लोग कर्मकांड में नहीं जाते वो सोचते हैं ठीक है हम तो वेदांत का अध्ययन करेंगे, हम ज्ञानी लोग हैं, हम भोगी नहीं है। लेकिन वेदांत भी कलयुग में लोगों के लिए नहीं है। यहां केवल भक्ति, केवल हरिनाम का उच्चारण। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वृंदावन की ओर वो जा रहे थे, तो रास्ते में वो वाराणसी में रुके, काशी में, और वहां पर कई दिन रहे और वहां बहुत उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का, और हजारों लोग उनके संग में संकीर्तन में भाग लेने के लिए आए। वहां पर कई और सन्यासी भी थे जो कि मायावादी संप्रदाय के थे। मायावादी मतलब मायावाद, जो ये वाद लगाते हैं कि भगवान का शरीर भी माया का शरीर है और भगवान वैसे निराकार है, लेकिन जब ये संसार में अवतार लेते हैं तो तब वो साकार होकर आते हैं, कोई रूप धारण करके आते हैं, और ये रूप जो भगवान ग्रहण करते हैं ये भी भौतिक रूप है। जैसे हमारा शरीर है भौतिक, वैसे उनका शरीर भी भौतिक है, तो इसको मायावादी कहते हैं। कई बार भक्त लोग भी मायावादी शब्द को सही तरह से नहीं जानते, तो सोचते हैं कि मायावादी मतलब जो माया में है वो मायावादी, जो भोगवादी है वो मायावादी हो गया। अगर कोई व्यक्ति बहुत भोग करता है तो वो मायावादी हो गया, ऐसे नहीं है। मायावादी मतलब जो व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान का शरीर माया का बना हुआ है, वैसे निराकार हैं भगवान लेकिन रूप उन्होंने लिया है और ये रूप भौतिक है, ऐसे समझने वाले जो लोग हैं उनको मायावादी बोलते हैं शंकर संप्रदाय के। तो ये सन्यासी सब वाराणसी में भरे हुए थे, क्योंकि वाराणसी या काशी मायावादियों की राजधानी है। सब वहां सन्यासी जो है ये मायावाद दर्शन का ही प्रचार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन सन्यासियों से संग नहीं किया, केवल वो भक्तों के संग में कीर्तन किया करते थे। तो मायावादी सन्यासी जो हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत टीका करने लगे, बहुत निंदा करने लगे कि ये भावुक है, भावुकों के बीच में जाके कीर्तन करता है, उसने अपने सन्यासी धर्म को त्याग दिया है, सन्यासी को चाहिए कि वो वेदांत का अध्ययन करे, ध्यान में बैठे, और ये तो केवल एक भावुक व्यक्ति की तरह नाचता है, गाता है, वाद्य बजाता है, ये तो सन्यासी का काम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय कुछ कहा नहीं, हंसे। जब ये सब निंदा उन्होंने सुनी, केवल हंसे और आगे मथुरा की ओर चले गए। मथुरा से वृंदावन गए, फिर वृंदावन की यात्रा करके जब वो लौट रहे थे जगन्नाथपुरी, फिर से दोबारा वाराणसी होकर गए। और इस समय चंद्रशेखर नाम के एक कायस्थ भक्त था, उनके घर में रुके, और हर दिन तपन मिश्रा नाम का उनका भक्त था, उनके घर में वो प्रसाद स्वीकार करते थे। चैतन्य लीला या गौर लीला से आपको स्मरण होगा कि तपन मिश्रा ये पहले पूर्व बंगाल में रहा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षक या अध्यापक के लीला कर रहे थे अपनी गृहस्थ लीला में, तब वो पूर्व बंगाल में गए थे थोड़ा कुछ कमाई करने के लिए, और उनकी मुलाकात तपन मिश्रा से हुई थी। और तपन मिश्रा पहले व्यक्ति थे जिनको कि उन्होंने अपना सारा स्वरूप बताया, असली स्वरूप बताया, और कहा कि तुम जाओ वाराणसी में और ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो तपन मिश्रा बंगाल को छोड़कर वो वाराणसी गए थे और महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, और इतने सालों बाद फिर महाप्रभु वाराणसी में आए और तपन मिश्र की इच्छा पूरी हो गई। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर दोनों को बहुत बुरा लगता था कि सारे मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु की इतनी निंदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु केवल हंस डालते थे, लेकिन हृदय में महाप्रभु ने ठान ली थी कि इन मायावादियों का भी उद्धार करके ही रहूंगा मैं। जब मैंने सारे भोगवादियों का सबका उद्धार कर लिया है, ये केवल मायावादी मेरे जाल में फंसे नहीं है, अभी इनको भी फंसाना है, उनको भी भगवान के चरण में ले जाना है। ये लोग केवल निराकारवादी हैं, अपराधी हैं भगवान के चरण कमलों के प्रति, किसी न किसी तरह से इनका उद्धार करना है। तो उसी समय भगवान ने एक ब्राह्मण को प्रेरित किया और उस ब्राह्मण ने आके महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि ये कृपा करके मेरे घर में आके प्रसाद स्वीकार कीजिए। मैंने अन्य सारे वाराणसी के सन्यासियों को भी निमंत्रण दिया है। मैं जानता हूं कि आप उन सन्यासियों के संग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे घर में आकर मेरा घर पावन कर दीजिए। तो महाप्रभु ने तुरंत इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वो वहां पर गए। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि सारे मायावादी सन्यासी ऐसे बैठे हुए थे सब जगह ऊपर। जब उन्होंने देखा तो तुरंत उनको दंडवत किया। महाप्रभु ने नम्र स्थान स्वीकार किया और फिर अपने चरणों को उन्होंने धो लिया और जहां उन्होंने अपने चरण धोए थे वहीं पर नीचे बैठ गए, नीचे के स्थान पर। तो जब और उस समय महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और जो कि निराकार ब्रह्म के उगम स्थान है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, जैसे कि गीता में भगवान बताते हैं, फिर उन्होंने अपना ब्रह्म तेज का स्विच चालू कर दिया। तो जैसे ही ब्रह्म तेज आया उनके दिव्य शरीर से, तो मायावादी सन्यासी जो कि निराकार ब्रह्म से, तेज से, प्रकाश से बहुत प्रभावित होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के इस तेजस्वी स्वरूप को देखकर बड़े आकर्षित हो गए और तुरंत उनके जो प्रमुख थे प्रकाश आनंद सरस्वती, उन्होंने उठकर कहने लगे महाप्रभु से, अरे गोसाई, आप गोस्वामी जी, आप यहां नीचे स्थान पर क्यों बैठे हैं? आइए हमारे साथ बैठिए। आप किस बात का संकोच कर रहे हैं? क्यों आप दुखी हैं ऐसे कि आप ये गंदे स्थान में नीचे बैठ रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो एक नीच व्यक्ति हूं, एक निम्न श्रेणी संप्रदाय का सन्यासी हूं, आप ऊंचे श्रेणी के संप्रदाय के सन्यासी हैं। वैसे सन्यासी संप्रदायों में भी ये एक तरह का भेदभाव होता है, जो टाइटल होते हैं अलग अलग सन्यासियों के, जैसे आश्रम, तीर्थ और सरस्वती इत्यादि, ये ऊंचे श्रेणी के टाइटल माने जाते हैं। तो जो सन्यासी ये टाइटल स्वीकार करते हैं वो ऊपर के लेवल के सन्यासी माने जाते हैं। और ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए अरण्य और भारती, ये सब निम्न श्रेणी के सन्यासी माने जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने किनसे सन्यास लिया था? केशव भारती, तो भारतीय संप्रदाय के थे, हालांकि मायावादी लेकिन भारतीय संप्रदाय। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो भारतीय संप्रदाय का हूं और आप तो सरस्वती संप्रदाय के हैं, तो आप तो बहुत ऊंचे हो गए, इसलिए हम आपके लायक नहीं है, तो हम नीचे बैठ रहे हैं। तो इसलिए महाप्रभु नीचे बैठे थे, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती उठे और उनको अपने हाथों से उठाकर महाप्रभु को ले आए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने जो ये सेवा की, इस सेवा की वजह से उनका उद्धार होना था आगे चल के। तो किसी न किसी तरह से, गलती से, जानबूझकर, सोच समझकर या न समझकर, हम अगर भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। तो उन्होंने इतनी सेवा की भगवान की कि भगवान को नीचे के स्थान से उठाकर अपने हाथ से पकड़कर उनको ऊंचे स्थान में ले आकर बैठे, तो प्रकाशानंद सरस्वती की भक्ति शुरू हो गई, हालांकि वो मायावादी थे। पर उस समय प्रकाशानंद सरस्वती बड़े नम्रता से पूछने लगे चैतन्य महाप्रभु को, गोस्वामी जी, हमने सुना है कि आप तो भारतीय संप्रदाय के हैं, हम तो बहुत सम्मान करते हैं भारतीय संप्रदाय के, और केशव भारती सन्यासी का नाम भी हमने सुना है, बड़े विद्वान, बड़े पहुंचे हुए सन्यासी हैं, तो आपने भी हमारे मायावाद शंकर संप्रदाय में ही दीक्षा ली है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको ध्यान करना चाहिए और वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तो इन चीजों को छोड़कर आप क्यों भावुक लोगों के संग में जाकर एक साधारण भावुक की तरह नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं? आपने निजी धर्म को क्यों त्याग दिया है? ये सन्यासी धर्म नहीं है, इसलिए कृपा करके हमें ये बताइए कि इसका कारण क्या है। और हम सब सन्यासी यहां एक ही गांव में रहते हैं, तो जब आप वाराणसी में रहते हैं तो हमारा संग क्यों नहीं करते आप? तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु ने क्या बताया। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहर कारण, गुरु मोरे मूर्ख कहे करिला शासन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे श्रीपाद, हे गोस्वामी जी, इसका कारण सुनिए। कारण क्या है? गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। गुरु ने देखा कि मैं तो मूर्ख हूं और इसलिए उन्होंने शासन किया, मुझे उन्होंने दंड दिया। दंड दिया मतलब मुझे टोका। क्या कहने लगे, मूर्ख तुम्ही, तुम्हार नाहीक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो उनके गुरु ने उनको बोला, देखो तुम तो बड़े मूर्ख हो और तुम्हारा वेदांत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम क्या करो, कृष्ण मंत्र जप सदा, केवल कृष्ण का नाम सदा तुम जप किया करो, क्योंकि ये सारे मंत्रों का, सारे वेदों का सार है। वास्तव में ईश्वर पुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उन्होंने ऐसे कभी कहा नहीं था कि तुम मूर्ख हो। कैसे कहते, ईश्वर पुरी को अच्छी तरह से मालूम है कि ये तो भगवान कृष्ण है, पहले से ही मालूम था, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे सेवा उनसे कराना लेना चाहते थे तो भगवान के गुरु बन गए। तो भगवान ईश्वर पुरी ने कभी ऐसे नहीं कहा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एक मूर्ख की तरह प्रस्तुत कर रहे थे, दिखाने के लिए कि वास्तव में हमें कैसे सोचना चाहिए, और प्रचार हेतु वो ऐसे बोल रहे थे। और फिर कहने लगे कि वास्तव में मेरे गुरु ने फिर मुझे एक मंत्र दिया, कहा तुम वेदांत नहीं पढ़ो, तुम केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। उन्होंने मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया और फिर एक मंत्र बोले मुझे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 कतिरन्यथा, कि इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और मुझे यह भी बताया कि ये मंत्र हमेशा अपने कंठ में रखा करो और इस प्रकार से सदा ये हरि नाम का जाप किया करो। और उस समय मैंने ये मंत्र जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं जाप करना शुरू किया, मैंने देखा कि क्या हो रहा है, मैं हंसने लगा, रोने लगा, नाचने लगा और ये सब नृत्य करने लगा। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मेरा आध्यात्मिक ज्ञान ढक गया है ये मंत्र की वजह से। तो फिर मैं अपने गुरु के पास गया और मैं बोलने लगा, किबा मंत्र दिलो गोसाई, किबा तार बल, कि कैसा मंत्र दिया आपने मुझे गुरुदेव, इसका किसकी क्या शक्ति है, ये मंत्र को जाप करने से मैं नाचने लगा हूं, रोने लगा हूं, हंसने लगा हूं, कीर्तन करने लगा हूं, मैं तो पागल ही हो गया, तो इसका क्या करना चाहिए। तो फिर महाप्रभु बोलने लगे, फिर मैंने गुरु ने कहा, अरे ये तो तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि मेरे शिष्य को ऐसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई। वास्तव में ये सारे शास्त्रों का सार है कि हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए। वैसे चार पुरुषार्थ बताए जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये भक्ति वास्तव में पंचम पुरुषार्थ है, पांचवा लक्ष्य है और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है मनुष्य जीवन में। इसलिए हमें सब कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति का मार्ग कलयुग में हरिनाम का उच्चारण है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कीर्तन करते हैं तो स्वाभाविक तौर से हमारा हृदय कृष्ण प्रेम से पिघल जाता है और फिर ये सारे लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो तुम्हारे शरीर में प्रकट हुए हैं। इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है, अभी तुम केवल कृष्ण मंत्र करते रहो और बाहर जाके प्रचार करो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने फिर प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि ये सब अन्य चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इस भक्ति के सामने तुच्छ हैं, और वेदांत का अध्ययन कलयुग में कौन कर सकता है, कलयुग में ये सब चीजें वर्जित हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों की ये क्षमता पात्रता नहीं है कि वो वेदांत का पाठ करके समझें कि वेदांत क्या चीज है। वेदांत मतलब कृष्ण, वेदों के अंत हैं कृष्ण। जब वेदों का पाठ करके आप अंत तक पहुंच जाएंगे तो ये निष्कर्ष पे आपको पहुंचना चाहिए कि कृष्ण ही सब कुछ है। वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। वेदांत के रचयिता, वेदांत कृत कृष्ण है और वेदविद एव चाहम्, वेद को जानने वाले भी वो हैं, और वेदों को पढ़ने का उद्देश्य केवल कृष्ण को जानना है। इसलिए हमें केवल आध्यात्मिक विषय कृष्ण के बारे में हमें सुनना चाहिए। दीक्षा के समय अवश्य हम बायां कान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कृष्ण कथा करते समय दोनों कान खुले होने चाहिए और इससे हमें भर भर के कृष्ण कथा के अमृत का पान करना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय पूरी तरह से शुद्ध होकर उसमें कृष्ण भक्ति का उदय हो जाए और मृत्यु के बाद फिर हम भगवान के धाम में जा सकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे।